अभी हम सब के बीच में हमारे इस ब्राह्मण परिवार के अमूल्य रतन ऐसे हमारे आदरणीय शीलू दीदी जी पधारे हैं। हम सब एक हाथ की ताली से दीदी जी का अभिवादन स्वागत करते हैं। थोड़ा सा परिचय में दीदी का देना चाहूंगी। आप राजयुग शिविर के निर्देशिका हैं। राजयुग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत एजुकेशन विंग के आप उपाध्यक्ष हैं। सन 1993 में टीवी के माध्यम से संस्था की ओर से मूल्यों के प्रति जागृति लाने के भगीरथ कार्य की शुरुआत करने वाली आप सर्वप्रथम ब्रह्मा कुमारी बहन हैं। आपके प्रवचन टीवी, जी टीवी, सोनी टीवी, आस्था, संस्कार चैनलों पर कई वर्षों तक लगातार प्रसारित होते रहे और आज भी वर्तमान समय पीस ऑफ माइंड और अवेकनिंग टीवी पर भी समय समय पर आपके विविध कार्यक्रम आते हैं। आप सबको पता होगा और हम सब के लिए बड़े हर्ष और गर्व की बात है कि सबसे पहले जो टीवी में प्रोग्राम शुरू हुए उसमें सबसे पहले शुरुआत में दीदी के ही प्रवचन चले हैं, जो जी टीवी, सोनी, आस्था, संस्कार चैनलों पर आते रहे। आपने 7 द्वीपों में 75 से भी अधिक देशों में भ्रमण किया है। आप 1960 में 12 साल की आयु में ज्ञान में आए और 1969 में 21 साल की आयु में आपने अपना जीवन ऐश्वर्य सेवा में समर्पित किया है। 1976 से मुख्यालय माउंट आबू में आप स्थायी रूप से रहकर अनेक गणमान्य व्यक्तियों की सेवाएं कर रहे हैं। दीदी जी, आप हिंदी, इंग्लिश, सिंधी 3 भाषाओं का सफल अनुवादन भी कर सकते हैं। दीदी जी को स्वयं बाबा ने वरदान दिया है। बाबा से दीदी को वरदान मिला है, आपकी वाणी में देवी सरस्वती का वास है। दीदी ब्राह्मण परिवार का कोहिनूर हीरा है, रूहानियत की खुशबू से भरपूर रूहे गुलाब है। दीदी जी का परिचय और क्या दे, दीदी जी का जीवन ही स्वयं में एक संदेश है। दीदी के लिए 2 शब्द जरूर कहूंगी। दीदी शांति की साकार मुस्कान है, सेवा और स्नेह की पहचान है। दीदी ईश्वर से जोड़ने वाली सच्ची राह दिखाए, हर मन के लिए वरदान है हमारी आदरणीय श्रद्धेय शीलू दीदी जी। आज आपका विषय है कदम कदम श्रीमत पर कैसे चले। कहते हैं कदम कदम श्रीमत को जीवन में अपनाए तो हर मोड़ पर सही दिशा पाए। मन की चाह नहीं जब बाप की मानी, जब तब जीवन बनी सच्ची कल्याणी कहानी। श्रीमत दीपक है अंधकार में, राह दिखाती हर संस्कार में। जहां बुद्धि थक जाए सोच सोच कर क्या करे कैसे करे, उलझन में आ जाए, तो जहां बुद्धि थक जाए सोच विचार से, वहां श्रीमत सहारा बने स्वीकार से। तो आज हमारी आदरणीय दीदी जी इस विषय पर प्रकाश डालेगी कि हम कदम कदम श्रीमत पर कैसे चले। आदरणीय शीलू दीदी जी, ओम शांति।
ओम शांति, ओम शांति। कदम कदम हम श्रीमत पर कैसे चले, ये कईयों के प्रश्न होते हैं। बाबा की मुरली में तो सुनते हैं बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चलो, लेकिन कैसे चले? तो अगर हम इसकी गहराई में जाएंगे तो देखो कई प्रकार की मतें हैं। एक मत तो अपनी मत है, जिसको हम कहते हैं मन मत। फिर दूसरी मत है पर मत, जो लोग हमें मत देते हैं। तीसरी मत है श्रीमत, जो भगवान हमें मत देते हैं। अब तीनों ही एक हो जाए ये तो होगा नहीं, क्योंकि मन मत अर्थात मनमानी, मन में जो आया वो करना, जैसे आया वैसे करना। मन एक घोड़ा है और वो मन चंचल है, तो वो चंचल मन अगर बुद्धि की लगाम से नहीं चलता तो वो बेलगाम घोड़ा कहाँ का कहाँ भटक जाता है। तो मन मत जो वास्तव में देह अभिमान पर आधारित है, वो मन मत हमें कहाँ ले जाएगी? सोचेंगे तो पता चलता है कि देखो मन मत से हम कहाँ पाताल में गिर गए, तमो प्रधान बन गए, क्योंकि मन रूपी चंचल घोड़े के वश हो गई आत्मा। परंतु मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि की लगाम हमने खींची नहीं तो मन बेमानी से चलता रहेगा। इसीलिए कहा जाता है सोच समझ कर कर्म करो। जो भी कर्म करना है पहले तो मन सोचेगा, फिर बुद्धि उसका निर्णय करेगी कि ये जो मन कह रहा है वो मैं करूं या नहीं करूं, अच्छा है या बुरा है, इसका नतीजा क्या होगा, नुकसान होगा फायदा होगा, ये बुद्धि निर्णय करती है। लेकिन बुद्धि का न सुन मन दे अभिमान के वश होकर सोचता है जो इंद्रियों को पसंद है, तो इंद्रियों के वश चलता है और परिणाम स्वरूप मन चंचल होने के कारण, बुद्धि रूपी लगाम न यूज करने के कारण जो भी कर्म होते हैं वो सब बाबा कहते विकर्म बन जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है सोच समझ कर कर्म करो। परंतु देह अभिमानी व्यक्ति बिना सोचे बिना समझे कर्म कर लेता है, क्योंकि इंद्रियों के वश है। ये हाथ थप्पड़ मारने के लिए नहीं है, ये हाथ आशीर्वाद देने के लिए है, ये हाथ दाता के हाथ है। इसलिए देवताओं का हाथ कैसे दिखाते हैं? आशीर्वाद का हाथ, वरदान का हाथ, या आशीर्वाद का हाथ ऐसा होता है सिर पर आशीर्वाद। कई आते कहते बहन जी आशीर्वाद करो आशीर्वाद करो, तो हाथ ऐसे होता, ऐसे थोड़ी होगा। और दाता का हाथ कैसा होता है? जैसे लक्ष्मी का हाथ, अशरफिया उसकी हाथ से निकलती है। लेकिन भिखारी का हाथ कैसा होता है? भीख मांग रहा है तो ऐसा। तो बाबा कहते हैं मन मत पर चलना माना पीछे पश्चाताप करना, और फिर परिणाम क्या होगा? परिणाम तो विकर्म ही बनेंगे और विकर्म बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी, पश्चाताप होगा। तो मन मत पर बाबा कहते हैं कभी मत चलो, जो मन में आया कर लेना, मन मौजी उसको कहते हैं, मन मौजी बेपरवा बादशाह, छोड़ो रे क्या होता है देखेंगे, देख लेंगे देख लेंगे। ये बेपरवा बादशाह बाबा कहते हैं मत बनो, बेफिक्र बादशाह भले बनो लेकिन बेपरवा बादशाह नहीं बनो। बड़ा अंतर है दोनों शब्दों में। बेफिक्र बादशाह अर्थात कितने फिक्रों से बाबा ने हमें फारिग कर दिया है, आत्मा का ज्ञान देकर, परमात्मा का ज्ञान देकर, कर्मों का ज्ञान देकर, ड्रामा का ज्ञान देकर बाबा ने हमें कई फिक्रों से फारिग कर दिया है। जो हम मन मत पर करते थे वो अब सोच समझ कर करने लगते हैं तो फिर फिक्र नहीं रहता, क्योंकि पता है हमने तो ठीक किया। परंतु ड्रामा में जैसे होगा, हम किसी को दोष नहीं देंगे। तो एक है मन मत और उसका परिणाम हम देख रहे हैं, कलयुग अंत में पहुंच गए हैं, देह अभिमान के वश मन चल रहा है। और दूसरा है परमत। परमत क्योंकि हर एक की अगर मत लेंगे तो मत तो अब कहा जाता है मुंडी मुंडी मते बिना, जितने मुख उतनी बातें। हर एक अपने अपने दृष्टिकोण से वो मत देगा, अपने ढंग से देगा या अपने अनुभव से देगा या जो भी आप समझ लो वो उस अनुसार देगा। उस पर एक कहानी बताते ना, बचपन में हम पढ़ते थे सुनते थे कि एक पिता और बेटा गधे पर बैठ करके जा रहे थे तो लोगों ने कहा, अरे देखो ये गधे पर बाप और बेटा दोनों बैठे हैं, कितना बोझ उस बेचारे गधे पर आ रहा होगा क्योंकि दोनों बैठ के चल रहे हैं, तो कम से कम जवान तो न बैठे, चलो बूढ़ा बैठे। तो फिर अब लोगों ने ये कहा तो फिर बूढ़े ने कहा, ठीक है बेटा तुम उतर जाओ, हाँ मैं बैठता हूँ। क्योंकि लोगों ने कहा कि बूढ़ा बैठे और वो बेटा जो है वो उतर जाए, इतना बोझ नहीं होना चाहिए गधे पर। अब जैसे आगे बढ़े तो लोगों ने कहा, वाह बूढ़ा तो मौज कर रहा है गधे पर बैठा है और बेटा बेचारा हाँफ रहा है, और बाप तो मौज कर रहा है, बेटे का जरा भी ध्यान नहीं रख रहा है। तो बेचारा वो बूढ़ा भी उतर गया और गधे को दोनों उतर करके लेके जाने लगे। तो आगे बढ़े तो किसी और ने कहा, अरे वाह गधा ऐसे ही चल रहा है और बाप बेटा देखो पैदल चल रहे, कोई बैठता ही नहीं है, किसी को बैठना चाहिए, हाँ किसी को बैठना चाहिए। अब कौन बैठे तो क्योंकि मत तो मिली कि एक बैठे, वो के वो बैठे वो बैठे, तो क्या करना चाहिए। हाँ वो भी पैदल चल रहा है, ये भी पैदल चल रहे, कोई बैठता नहीं है। अब ये मत सुन कर के भी उनको आया, चलो हम गधे को सिर पर उठा लेते हैं और ये सोचते हैं कि लोगों को पता चले कि ये बेचारा बीमार है, ये बीमार है इसीलिए उनको सिर पर उठा लिया, नहीं तो कहेंगे एक बैठे कोई कहे दूसरा बैठे कोई कहे दोनों बैठे हैं। तो सिर पर उठा लिया। अब वो सिर पर उठा के चले, दोनों ने इतना बोझ गधे का सिर पर उठा लिया। तो फिर एक नदी पार कर रहे थे, पुल पार कर रहे थे, तो पुल पर जैसे ही चल रहे थे तो गधे को छींक आई और जैसे छींक आई वो नदी में गिर गया नदी में गिर गया। तो देखो अनेकों की मत पर चलने से क्या परिणाम हुआ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं एक कहावत है, सुनो सबकी लेकिन करो अपनी, जो आपको उचित लगे। तो सुनो सबकी, ऐसे नहीं कि क्यों सुनो तुम कौन होते हो बोलने वाले, नहीं, रिस्पेक्ट देना है, ठीक है, देखेंगे, हाँ देखेंगे करेंगे, ये भी एक रिस्पेक्ट है, भले करो या नहीं करो वो आपके ऊपर है, पर सुनो सबकी, ये नहीं कहो कि मुझे नहीं सुनना है, नहीं। तो इसीलिए हाँ जरूर करो, लेकिन करना है नहीं करना है वो तो आपको निर्णय लेना होगा। इसलिए सुनो जरूर, ये भी नहीं कि नहीं सुनो, क्योंकि हर एक को रिस्पेक्ट देना है, सम्मान देना है, पर करना न करना वो आपके हाथ में है। अब हम अगर परमत पर भी सोचें तो हर एक की अपनी अपनी मत है कि कोई विशेष अब किस रूप से कहता है, क्या देखता है, क्या सोचता है। तो जरूरी थोड़ी है कि हर एक की मत पर चलना है। आज भी बाबा ने क्या कहा कि देखो सतयुग में कोई सलाहकार नहीं होता है राजा महाराजा महारानी को। अगर महाराजा महारानी सलाहकार रखे माना वो बुद्धू है, क्योंकि अनेकों से पूछता रहता है, सलाहकार से पूछना माना खुद बुद्धू है ना, मालिक है वो अथॉरिटी है ना, तो वो कर सकता है, सलाहकार से क्यों पूछना, क्या उसको पता नहीं है कि क्या करना है या नहीं करना है। इसीलिए सतयुग में कोई सलाहकार नहीं होता, कोई एडवाइजर नहीं होता है, कोई मंत्री नहीं होते, वहां राजा ही सर्वोपरि है। तो बाबा कहते हैं वो किस आधार पर, आज बाबा ने बताया कि वो जो सर्वोपरि है, जिनको कोई भी सलाहकार की जरूरत नहीं सतयुग में, क्योंकि कलयुग में तो बहुत सलाहकार रखते हैं, कितने सलाहकार होते हैं, एक मंत्री माना क्या, मंत्र देने वाला, सलाह देने वाला, मंत्री का अर्थ वास्तव में वो है मंत्र। मंत्र शब्द कहाँ से आया, मंत्र माना कोई राय, कोई सलाह, कोई विचार। तो कोई वो राय जो देते हैं वो मंत्री बन जाते हैं, और सतयुग में कोई मंत्री नहीं होते हैं। तो किस आधार पर वहां कोई मंत्री नहीं होगा, क्योंकि बाबा ने आज बताया, क्योंकि इस संगम पर श्रीमत का पालन कर रहे हैं। तो जो भगवान की श्री मत इस समय मिलती है, उसकी उस श्री मत पर चलने से इतने बुद्धिमान बन जाते हैं, जो सतयुग में कोई भी सलाहकार की आवश्यकता नहीं रहती है। तो संगम युग पर बाबा ने हमें जो श्रीमत दी है, हर मुरली में बाबा हमको कितनी श्रीमत देते हैं, कदम कदम की श्रीमत देते हैं, हम उस पर कितना चलते हैं, चाहे साकार मुरलियां, चाहे अव्यक्त मुरलियां, हर मुरली में हमें कोई न कोई लिस्ट है श्रीमत। बाबा कहते ये करो ये नहीं करो, ये सब श्रीमत में आता है। बच्चे ये आपके लिए अच्छा होगा, ये नहीं अच्छा होगा, तो ये करो नहीं करो, करो नहीं करो, क्या करो क्या नहीं करो, वो सब श्रीमत में आता है। और सुबह से लेकर रात्रि तक, यहाँ तक कि नींद के लिए भी बाबा की श्रीमत हमें मिलती है। सुबह उठो तो कैसे उठो, एकदम से नहीं उठ जाओ, लेकिन बिस्तर पर से जैसे उठे पहले बिस्तर पर बैठो, और पहले पहले बाबा को क्या कहो, क्या कहो, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा। तो पहला ही संकल्प बाबा का आए, और कोई नहीं। दुनिया में तो देखो माँ उठेगी जैसे उठेगी, अरे आज क्या खाना पकाना है, हाँ माताएं, आज पति को जल्दी जाना है, नाश्ता बना के देना है, सब उठते यही संकल्प आता है। तो कई देहधारियों के संकल्प आते हैं, आज हमको ये काम करना है, वो संकल्प आते हैं, लेकिन नहीं। तो श्रीमद क्या कहती है, पहला संकल्प जैसे नींद से उठे, बाबा गुड मॉर्निंग, और बाबा की याद हो। और जैसे बाबा को याद किया, बाबा कैसे बुद्धि का ताला हमारा इतना खोल देता है, जो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि आज सारा दिन हमें क्या करना है। सवेरे बाबा की याद में हम रहते हैं तो वो शक्ति हमको मिल जाती है सारे दिन के लिए। अगर उठते ही लौकिक बातें याद करते हैं या उठते ही अपना मोबाइल चालू कर देते हैं, तो बताओ ये सब परमत की बातें होगी ना, मोबाइल में क्या आएगा, भगवान की श्रीमत तो नहीं होगी इसमें। तो इसीलिए सवेरे सवेरे का पहला संकल्प केवल बाबा हो और कोई नहीं। इसीलिए बाबा कहते सब संबंध मेरे से जोड़ो, और संबंध होंगे वो बुद्धि में होंगे तो वही सवेरे सवेरे याद आएंगे। फिर दिन की वो जो दिनचर्या है उसमें भी बाबा कदम कदम पर श्रीमत देते हैं। क्या श्रीमत देते हैं, बच्चे सवेरे सवेरे हाँ बाबा की मुरली पढ़ो, सवेरे सवेरे मुझे याद करो, सवेरे सवेरे हाँ बाबा के सिवाय और कुछ नहीं होना चाहिए, अमृत वेला केवल बाबा के लिए है, उस समय और कोई काम नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो इसीलिए अमृत वेला कम से कम 4 से 4:45 बजे तक बाबा के सिवाय और कोई बुद्धि में न हो और कुछ भी न हो, तब हम कहेंगे कि आत्मा ने शक्ति भरी। और फिर बाबा कहते हैं हाँ जल्दी स्नान करके, स्नान करते समय भी बाबा याद आए। हमने तो विदेशों में देखा कि टॉयलेट में लैट्रिन में जाते हैं, बाथरूम में स्नान करते, सब जगह बाबा का चित्र, अब बताओ लैट्रिन में भी बाबा का चित्र। तो वो कहते थे कि वहां भी तो बाबा को याद करना है ना, वहां भी तो बाबा को याद करना है, इसीलिए बाबा का चित्र सब जगह। भारत में हम सोचेंगे लैट्रिन में कहां बाबा का चित्र रखेंगे, लेकिन नहीं। तो देखो हर वक्त बाबा के सिवा और कुछ भी याद ना आए, ये भगवान की हमें पहली श्रीमत है। और फिर स्नान करके बाबा कहते हैं फिर सेंटर जाते हैं। तो सेंटर पर भी जब जाते हैं तो वहां भी बाबा की मुरली होती है, वहां मुरली चलती है। आज तो बाबा ने बताया कि बाबा के सम्मुख होते हो, भले कोई बहन सुनाती है लेकिन सुनाती तो बाबा की मुरली है। तो उस समय क्या सोचो, जैसे बाबा के सम्मुख हूं मैं। आज बाबा ने विशेष रूप से ये कहा, मधुबन में बच्चे क्यों आते हैं, बाबा के सम्मुख होने के लिए। तो हम बाबा के सम्मुख है देखो, इसलिए बाबा के इतने बड़े बड़े फोटो लगाए हैं ताकि ऐसे महसूस हो कि हम बाबा के सम्मुख हैं। भले साकार में बाबा नहीं है लेकिन ये तो नहीं कहेंगे कि चले गए, अव्यक्त रूप में अब भी हमारी वही पालना कर रहे हैं, वही आत्माओं की बुद्धियों को टच कर रहे हैं, वही ये कार्य करवा रहे हैं। लेकिन अब बाबा ने बहनों को आगे रखा है, प्रत्यक्ष किया है। अब पहली जो अव्यक्त मुरली चली थी उसमें बाबा ने यही कहा कि अब सूर्य और चंद्रमा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा, ये दोनों रीढ़ की हड्डी बन जाएंगे। और माताएं बहनों को आगे किया, इसीलिए दीदी दादी को आगे किया, और उनको आगे करके यही कहा कि अब श्रीमत इनके द्वारा मिलेगी। तो दीदी दादी तो अपने आप को इतना निमित समझते थे दीदी तो यही कहती थी, दादी भी कहती थी, हम तो कुछ नहीं करते, बस बाबा जो करा रहे बाबा करा रहे, क्योंकि हर कार्य श्री मतपट वो करते थे, कहीं भी अपनी मनमत नहीं चलाई, बाबा ने क्या कहा है, बाबा ने क्या कहा है, कोई भी ऐसी बात आई बाबा ने क्या कहा है वो हमें करना है। मीटिंग होती थी आपस में, कई राय निकलती थी, तो कई राय निकलती थी तो कौन सी राय माने, फिर तो कहेंगे जो बहुमत है वही स्वीकार करना है, परंतु पहले तो यही था हाँ क्या राय ले, फिर हेडक्वार्टर्स में पूछते थे, फिर बाबा से पूछते थे, फिर बाबा फाइनल श्रीमत देते थे। तो अभी भी बाबा से हम श्रीमत ले सकते हैं, अगर बुद्धि की लाइन क्लियर है तो बाबा की श्रीमत मिलती है, अंतर में पता चलता है ये बाबा हमें श्रीमत देते हैं। कई भाई बहनें पूछते हैं कि बाबा की श्रीमत है या मेरी मनमत है, ये कैसे पता चले, कई बार अपनी मनमत होती है और हम क्या कहते हैं, बाबा ने मुझे आप कहा है, बाबा ने मुझे कहा है, उसकी अपनी मनमत, अपना स्वार्थ, लेकिन वो स्वार्थ न समझ करके बाबा की श्रीमत, बाबा की श्रीमत, बाबा ने कहा, लेकिन ये बाबा ने कहा या उसकी मनमत है ये कैसे पता चले। अगर इस पे असफलता मिलती है, चलो कहा बाबा की और कर लिया, पर असफलता मिली जरूर ये अपनी मनमत है। और दूसरा, फिर दूसरों से अगर कुछ राय लेते हैं कि ऐसे मुझे आया कि बाबा ने कहा, परंतु अगर वो राय और स्वीकार नहीं करते और नहीं करते और फिर भी कर लेते और विघ्न आते हैं, तो समझो ये बाबा की श्रीमत नहीं थी। क्योंकि श्रीमत तब होगी जब सब स्वीकार करे, सब स्वीकार करे। अगर कोई स्वीकार करे कोई नहीं स्वीकार करे तो ये श्रीमत थोड़ी हुई, श्रीमत तो केवल मुझे थोड़ी टच हुआ, सबको टच होगा क्योंकि सब बाबा की मत पर चलते हैं।
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है, अपने सुकर्मों के बलदार ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता मुक्ति धाम। सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है,
इसीलिए अवश्य है कि संगठन में जब रहते हैं तो हमें औरों की भी सुननी पड़ती है। ऐसे नहीं मैं जो चाहूं सो करूं। फिर बाबा कहते हैं आगे दिनचर्या में भोजन करते हैं तो भोजन भी हमारा कितना सात्विक हो। ऐसे नहीं जब आया खा लिया, जब जैसा आया खा लिया, नहीं। कितना हम व्यवस्थित रूप से बाबा की याद में पकाया हुआ भोजन भोग लगाते हैं और फिर स्वीकार करते हैं। ऐसे नहीं कि जिसने जो दिया बस डाल दिया मुंह में, नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, वो भी श्रीमत है कि बाबा को भोग लगा करके खाओ। कई कहते हैं ना कि आप लोग हमारे हाथ का क्यों नहीं खाते हो। हम कहते हैं कि भोग लगा हुआ नहीं है, हम तो जो भी बनाते हैं वो पहले भोग लगाते हैं फिर खाते हैं। कई तो यहाँ तक सो कहते हैं हम लोग क्या छूत है क्या। हाँ, ये तो हमने नहा धो करके बहुत अच्छी तरह से पकाया है, लेकिन नहीं, भोग तो लगाया नहीं ना। यहाँ तो हमारे लिए हमारा ये नियम है, बाबा को भोग भी लगाते हैं। हाँ, मुझे याद है एक बार दादी जी किसी से मिलने गए थे तो बहुत सारे व्यंजन रख दिए दादी जी के आगे। मिलना होता है वीआईपी से मिलते हैं तो बहुत सारे व्यंजन रख दिए, पर बाबा दादी ने एक भी चीज उठाई नहीं। मिठाइयाँ रखी थी खूब, दादी ने नहीं उठाई। तो वो भाई कहता है, दादी जी आप तो बहुत महान हैं, आप तो इतनी बड़ी योगिन हैं, आप कहते हो कि बाबा की याद में वो भोजन को भी शुद्ध कर सकते हैं, तो आप तो स्वीकार कर सकते ना, आप तो योगिन हैं, तो आप अपनी वो योग शक्ति से चलो आप कहेंगे कि भोग नहीं लगाए, लेकिन आप तो इसको पावन कर सकते हैं ना, तो आप अगर स्वीकार करेंगे तो आप में तो वो शक्ति है, ये पावन हो जाएगी, हो जाएगा। तो दादी ने कहा मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ। देखो दादी ने क्या सुंदर जवाब दिया। दादी ने कहा मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पीछे लाखों बाबा के बच्चे हैं, अगर मैं स्वीकार करूंगी तो वो लाखों कहेंगे दादी ने भी तो स्वीकार किया, चलो हम भी कर ले। हाँ, दादी ने किया ना तो हम भी कर ले। तो इसीलिए उनकी खातिर भी हम नहीं स्वीकार करेंगे, बोले योग बल से हम इसको शुद्ध कर लेंगे। लेकिन बाबा कई हरेक की अपनी अपनी परिस्थिति बताते हैं। कोई मिलिट्री में काम करते हैं तो मेस में खाना पड़ता है, अब वहाँ तो आप नहीं बनाएंगे ना, बना नहीं सकेंगे तो खाना ही पड़ता है। लेकिन उसके लिए भी बाबा युक्ति बताते हैं कि वो जो कुक है जो खाना पकाता है उसको बता दो, पहले कह दो कि लहसुन प्याज का जो छौंक लगाते उसके पहले मेरा निकाल दो, क्योंकि लहसुन प्याज मैं नहीं खाता हूँ। खाना तो वहाँ पड़ेगा भोजन, क्योंकि पका तो सकेंगे नहीं, तो लहसुन प्याज के बिना तो आपका वर्क अलग कर सकता है। फिर बाबा की याद में आपको खाना है, बाबा ने छुट्टी दी है, लेकिन ये तो नहीं कि भाई लहसुन प्याज का बनता है तो इसीलिए खाना ही है तो वो भी खा लो, नहीं, बाबा ने मना किया है, क्योंकि वो सात्विक नहीं है, हम तो योगी आत्माएं हैं, हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए। तो भोजन के लिए भी बाबा श्रीमत देते हैं। फिर बाबा कहते हैं बच्चे जब सैर पर जाते हो तो भी कैसे एकांत में रह बाबा की याद में सैर करो, सवेरे सवेरे भी सैर पर जाते हैं। और बाबा किसका मिसाल देते थे, देते अव्यक्त साकार मूल्यों में पादरियों का, जो क्रिश्चियन धर्म के फादर होते ना। तो माउंट आबू में वहाँ पर कॉन्वेंट स्कूल्स थे, वो पहले सब पादरी लोग वो स्कूल के मास्टर थे और नन्स थी जो स्कूल, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल था तो नन्स और फादर ये वहाँ, तो सवेरे सवेरे वो विचरण करते थे, वैसे ही विहार करते थे, पैदल करते थे। तो बाबा भी जाते थे तो बाबा देखते थे वो कितने साइलेंस में जा रहे हैं, कितने साइलेंस। उनके हाथ में माला होती थी, छोटी सी माला, वो माला भी जैसे सिमरन करते हुए पैदल जा रहे हैं। वो बड़ा चोगा पहन करके, क्रिश्चियन फादर्स, चर्च के फादर्स, नन्स भी ऐसे ही। तो बाबा कहते थे देखो ये कितनी साइलेंस में जाते हैं। तो बच्चे भी जब सवेरे सैर करने जाते हैं तो बिल्कुल साइलेंस में जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम किसके साथ हैं तो बातें ही करनी है, ज़रूरी नहीं है। अगर दोनों ही साइलेंस में हो, जो जितने जाते साइलेंस में हो, तो ये वाइब्रेशंस औरों को आकर्षित करेंगे। वो लोग आकर्षित करते थे देखो ये कैसे साइलेंस में जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जैसे बाबा का इतना आकर्षण था, उस दिन भी बाबा के मुरली में था, बाबा का कितना आकर्षण था, चुंबक के समान थे बाबा, और आत्माएं कैसे खींची हुई चली आती थी और बाबा को जैसे पकड़ लेती थी शुरू शुरू में भी और बाद में भी हम देखते थे। मेरा भी ये निजी अनुभव है, साकार बाबा की गोद ली हमने, बड़े नशे से कहती हूँ मेरा अलौकिक जन्म बाबा की गोद में हुआ, तब मैं 12 साल की थी। और कैसे बाबा का इतना आकर्षण था, जो बस जाकर के बाबा को चिपक गई, इतना आकर्षण था। और अब बाबा कहते हैं जैसे बाबा में इतना आकर्षण था, वैसे ही तुम बच्चे भी ऐसे आकर्षित कर सको आत्माओं को, परंतु अपने तरफ नहीं, बाबा तरफ। बाबा तो पिता थे, तो बाबा की गोद में जब आते थे बाबा कहते थे किसकी गोद में आए हो, इनको याद नहीं करना है, ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना है, शिव बाबा को याद करना है, ये तो निमित्त है। परंतु शिव बाबा के साथ तुम्हारा संबंध है। तो ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा की याद दिलाते थे, ये नहीं कि हाँ मैं इतना आकर्षण करता हूँ, नहीं, शिव बाबा को याद करो। तो बाबा कहते आखिर तुम्हें ब्रह्मा बाप समान बनना है तो तुम्हारा भी इतना आकर्षण होगा, लेकिन वो तुम्हारे आगे झुकेंगे। बाबा किसको झुकने नहीं देते थे, लेकिन बाप थे ना वो, अब हम तो भाई बहने हैं, तो इसीलिए हम तो उस रूप से नहीं लगाएंगे। दादियाँ बहनों को गले लगाती थी, बहनें दादी को पकड़ लेती थी, मम्मा को पकड़ लेती थी, कई फोटो आप देखेंगे, लेकिन हम तो अब वो रूप नहीं कर सकते क्योंकि हम तो फिर भी भाई बहने हैं। परंतु ये कौन सा आकर्षण हमारे अंदर होगा, बाबा ने उस दिन मुरली में कहा, हमारी पवित्रता का आकर्षण, वो पवित्रता खींचे आत्माओं को और वो उसी आधार पर वो झुके। अभी भी आते हैं आशीर्वाद, आशीर्वाद कहते हैं, बाबा कहते हैं आशीर्वाद मत मांगो, पुरुषार्थ करो, फिर भी बाबा सहज करके देते हैं। बच्चे कोई मेहनत नहीं है, मोहब्बत में रहो, बाबा की मोहब्बत में। तो इसीलिए हर वक्त के लिए बाबा श्रीमत देते हैं, सोचो तो कैसे सोचो, क्या सोचो, बोलो तो क्या बोलो, कैसे बोलो, करो तो क्या करो, कैसे करो, तो मन वचन कर्म संबंध संपर्क इन सब का वर्णन बाबा करते हैं। तो संबंध संपर्क में भी तो आना पड़ता है, हम कोई सूखे सन्यासी तो नहीं है। ये नहीं हम जंगल में चले जाएंगे या गुफाओं में बैठ के तपस्या करेंगे, हमें तो परिवार में रहना है, बाल बच्चों के साथ रहना है, जिम्मेदारियां निभानी है। तो जिम्मेदारी भी निभाएं, सब कुछ करें, लेकिन न्यारे और प्यारे भी रहें। ये बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते हैं, न्यारा भी बनना है प्यारा भी बनना है, परंतु किस समय न्यारा बनना है किस समय प्यारा बनना है उसकी भी बाबा श्रीमत देते हैं। हर वक्त प्यारा नहीं बनना है, हर वक्त न्यारा भी नहीं बनना है। जहां अपना स्वार्थ है वहां प्यारा बनते हैं, कई अपना स्वार्थ है तो बहुत प्यारे बन जाते हैं, और जहां हमें कुछ प्राप्ति नहीं होती है तो न्यारे हो जाते हैं। नहीं, न्यारा होने के लिए हमें श्रीमत क्या मिलती है कि बच्चे फंसो नहीं, फंसो नहीं, सब कुछ करो, निभाओ जरूर पर फंसो नहीं, छोड़ो भी नहीं, नया जोड़ो भी नहीं, फंसो भी नहीं, परंतु जो है निभाओ। और निभाओ कैसे, ये सब आत्माएं हैं, ये सोचकर। अवश्य उनके साथ तो हिसाब किताब है कर्मों का, तभी तो संबंध संपर्क में आए हैं, लेकिन हिसाब किताब नया नहीं बनाना है, कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे कोई नया खाता बन जाए। इसलिए बाबा कहते न्यारे रहो, लेकिन साक्षी दृष्टा होके प्यारे भी बन सकते हैं। हमारे बोल मीठे हो, कड़वे बोल न हो, बाबा कहते कड़वा नहीं बोलो। पहले तो हम सब क्या थे, बाबा ने उस दिन भी कहा, कांटे थे, बड़े बड़े कांटे, बबूल का कांटा कितना बड़ा कांटा होता है, और कांटा क्या करता है, चुभता है। कई बार हम कहीं जाते हैं ना तो हमें गुलाब का फूल देते हैं, और गुलाब का फूल जो होता है उसके साथ जो डंडी भी देते हैं उसमें कांटे होते हैं, तो जैसे पकड़ाया तो पहले तो कांटा लगता है। तो अब कहते भाई फूल देते हो तो कांटे तो निकाल के दो ना, नहीं तो कांटा तो होगा। भल गुलाब के फूल की डंडी में कांटा तो होता ही है, तो वो निकाल के देवे तब माँ तब डंडी के साथ दो, नहीं तो चलो थोड़ा सा है फूल देते हैं। तो हर फूल के साथ कांटा जरूर होता है, ये उसकी सुरक्षा है, फूल की सुरक्षा है। लेकिन बाबा कहते तुमको तो सच्चा फूल बनना है, सबको खुशबू देनी है, ज्ञान की खुशबू देनी है ना। फूल की विशेषता क्या होती है, बाबा जब रूहे गुलाब कहते हैं तो रूहे गुलाब की क्या विशेषता होती है, उसमें चारों ही गुण होते हैं जो फूल में होते हैं। हाँ, चारों ही गुण चाहिए, वो होगा रूहे गुलाब। कौन से चारों ही गुण, उसका रूप इतना सुंदर हो, उसका रंग इतना सुंदर हो, उसमें सुगंध हो और उसमें रस हो। भंवरे इसीलिए तो आकर्षित होते हैं क्योंकि फूलों में रस होता है। तो रूप रंग गंध रस, ये चारों जिसमें है वो रूहे गुलाब ही होता है। तो रूप भी कितना सुंदर होता है, तो योगी कैसा हो, वो आत्मा आकर्षित करे। बाबा बच्चों, आजकल भी बाबा ने कहा ना, छोटे बच्चे महात्मा समान, क्योंकि इतने पवित्र हैं, तो पवित्रता आकर्षित करती है। तो छोटे बच्चे क्यों आकर्षित करते हैं, भले सांवरे भी होते हैं, ऐसे नहीं कि सब बच्चे गोरे गोरे होते हैं, सांवरे भी होते हैं, लेकिन वो बच्चे भी आकर्षित करते हैं क्योंकि इनोसेंट है, बहुत निर्दोष है। महात्मा समान बाबा कहते हैं, वो महात्मा को तो फिर भी दुनिया का ज्ञान है, भले वो विकार छोड़ते हैं इसलिए महात्मा बनते हैं, लेकिन वो बच्चा तो है ही निर्विकारी, तो आकर्षित करता है क्योंकि उसकी पवित्रता आकर्षित करती है, उसका निर्दोषपना आकर्षित करता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी वो पवित्रता आकर्षित करे आत्माओं को, वो पवित्रता हमारे मन वचन कर्म में हो। कई बार बाबा कहते हैं चलो कर्म में तो दृष्टि वृत्ति शुद्ध है, ठीक है, किसी के तरफ फिजिकल भौतिक रूप से देह पर आकर्षित नहीं होते हैं, हाँ वो भी बहुत जरूरी है, देह पर आकर्षित कभी नहीं होना है, क्योंकि बाबा इसलिए कहते हैं आत्मा को देखो, आत्मा को देखो, और आत्मा को देखो माना भ्रकुटी पर देखो, भ्रकुटी में चमक रहा है अजब सितारा। ब्रह्मा बाबा को भी देखो तो उनकी भ्रकुटी में शिव बाबा विराजमान है, ये देखो भ्रकुटी में, देखो भ्रकुटी के बीच में वो इस सितारा इतना प्यारा सा चमक रहा है, वो रूप देखो। बाबा की नैनों में भी देखो तो वो नैनों में वो नूर चमक रहा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि किसी को भी देखो तो आत्मा रूप में देखो, उसके नीचे मत जाओ, नीचे जाओ ही नहीं, क्योंकि नीचे जाएंगे तो बहुत अंतर दिखाई देगा, किसी का नाक कितना मोटा होगा, किसका पतला होगा, पेंसिल जैसा नाक होता है ना कईयों का एकदम, और किसी का कितना मोटा मोटा होता है, हाँ तो नाक नीचे आता है। फिर होंठ देखो तो किसी के इतने पतले होंठ होंगे, किसके मोटे होंगे, तो मनुष्य कहेगा अरे ये देखो तो इसके होंठ कैसे है, इसके ये कैसे है। फिर और नीचे आओ, चलो वो फिर भी कोई बहुत बुरा नहीं है, और नीचे आओ तो सतो से रजो, रजो से तमो, एकदम दृष्टि वृत्ति तमोगुणी बन जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं नीचे देखो ही नहीं, केवल मस्तक पर चमकती हुई आत्मा देखो, बस मैं आत्मा उस मस्तक पर चमकती हुई आत्मा को देख रही हूं। आत्मा भाई भाई समझकर, बहन भाई भी नहीं, क्योंकि बहन भाई समझने से भी फिजिकल आकर्षण हो सकता है। लौकिक में भी अगर कोई भाई बहन हो, सगे भाई बहन है, एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी हाँ कुछ पता नहीं चलता है। आते ना हमारे पास जुगल आते तो हम कहते दो दिन और रुक जाइए, कहते नहीं हमारे घर में मेरी जवान बेटा बेटी है, मैं उसको उनको ऐसे छोड़ के आई हूँ, हाँ जाना पड़ेगा, जवान बेटा बेटी। तो भाई बहन है, कितना उनका प्योर पवित्र प्यार होना चाहिए, लेकिन देह का आकर्षण हो सकता है क्योंकि सब देह अभिमानी है इस दुनिया में, किसी पर भी भरोसा नहीं है। कोई सोचे बूढ़ा होगा तो कम से कम वो तो कोई ऐसा स्थूल शारीरिक आकर्षण नहीं होगा, लेकिन कलयुगी दुनिया में तो कहावत है आप भय बूढ़े तृष्णा भई जवान, बूढ़ा हो गया शरीर लेकिन तृष्णाएं नहीं जाती है, तमन्नाएं नहीं जाती है, कामनाएं नहीं जाती है, देह अभिमान नहीं जाता है, इसलिए उनसे भी हम डर लगता है। हम कहेंगे तो बूढ़ा आदमी है ना, नहीं, परंतु उनको भी आत्मा देखो तो वो दैहिक आकर्षण खत्म हो जाएगा। ये बाबा ने पवित्रता की कितनी सुंदर युक्ति बताई है, और बाबा कहते यही युक्ति है जो फिर सतयुग में भी काम आती है। वहां पर वो पवित्रता का आधार वो नेचुरल रूप में आत्मिक स्थिति है, कोई उनको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। जो संगम पर हम संस्कार बनाते हैं वही संस्कार चलते हैं, भले ज्ञान नहीं चलता है लेकिन संस्कार तो वही चलते हैं। तो इसीलिए क्या सोचो, क्या बोलो, क्या व्यवहार करो, हर एक के लिए श्रीमत है, हर एक के लिए। तो उसकी क्या युक्ति है जो कदम कदम पर हम श्रीमत पर चले? उसकी युक्ति है कि कुछ भी सोचने से पहले, बोलने से पहले, करने से पहले ये सोचो बाबा ने क्या कहा है, बाबा ने क्या कहा है। कोई गुस्सा कर रहा है तो बाबा ने क्या कहा है, क्या करो, आप भी गुस्सा करो। हाँ, बाबा कहते अगर दो हाथ जुड़ेंगे मिलेंगे तो ताली बजेगी, तो ताली नहीं बजाओ, अगर वो गुस्सा कर रहा है शांत रहो। ये बाबा की श्रीमत है, ये नहीं कि उसने गुस्सा किया तो मुझे भी आ गया। क्यों गुस्सा आ गया हमें? क्योंकि स्वीकार कर लिया ना वो जो कहता है, है ना, स्वीकार किया तभी गुस्सा आया ना। अब किसने कहा कि चल मूर्ख कहीं का, चल मूर्ख कहीं का, तो हमें गुस्सा आ गया, अरे ये मुझे मूर्ख कहता है, क्या समझता है अपने आप को। तो मुझे उसने मूर्ख कहा तो मैंने उसको कहा तू महामूर्ख। वो उसने मुझे मूर्ख ही कहा और हमने नहले पर दहला डाल दिया। हा? तो नहले पर दहला माना कि हम जीत गए। कैसे हम जीत गए? हमने उसको महामूर्ख कहा। अब उसने फिर और कुछ और बुरे शब्द कहे, हमने फिर और उससे बढ़कर बुरे शब्द कहे, आखिर नतीजा क्या होगा? हा? नतीजा क्या होगा? इसलिए कहावत है ना, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो भी मरा हुआ, वो भी मरा हुआ। क्यों? क्योंकि बात तो कुछ भी नहीं थी, जरा सा उसको लग गया, मान लो अब वो ये लग गया, अब लग गया तो गुस्सा किया, तुमको दिखाई नहीं देता है क्या? तुमको क्यों नहीं दिखाई देता? वो आपस में लड़ना शुरू कर दे, बात तो कुछ भी नहीं थी। कोई का इससे कोई का लगा तो कहेगा सॉरी, हाँ माफ करना, और कोई तो लड़ना ही शुरू कर देगा। तो देखो बात तो कुछ भी नहीं होती है लेकिन ऐसे ही लड़ाई शुरू हो जाती है बिना मतलब के। और दोनों ही जैसे बांस की लकड़ियां होती है ना, सूखी लकड़ियां होती है बांस की, तो कैसी होती है? इतनी सूखी होती है कि अगर हवा का झोंका आया और आपस में टकराई तो इतनी आग निकलती है। और जंगल के जंगल जल जाते हैं क्योंकि सूखी बांस की लकड़ियां थी, बारिश पड़ी नहीं, हरियाली नहीं थी, तो सूखापन था। तो सूखेपन में तो जैसे टकराए वो बांस की लकड़ियां, बांस के पेड़, वो आग निकलती है। तो ये भी मनुष्य देह अभिमान में आकर के कितनी आग निकाल रहे हैं। आज दुनिया का हाल देखो क्या लगा पड़ा है, बस एक दो को धमकियां ही दे रहे हैं, तुमने ये किया तो मैं ये करूंगा, तुमने अगर कुछ किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और छोड़ेगा नहीं, और एक ने किया दूसरे ने छोड़ा नहीं तो दोनों ही मरेंगे, दोनों ही मरेंगे। ये थोड़ी कि दोनों में से एक कोई बचेगा नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं हाँ तुम झुक जाओ, कोई बात नहीं, कोई विकर्म नहीं बने। उसने हमको दुख दिया, आपने दुख लिया क्यों, है ना? कई कहते वो उसने हमको दुख दिया ना, पर लिया तो आपने ना, मत लो, कोई जबरदस्ती तो आपको दुख नहीं दे सकता है। तो जब हम अपने संकल्पों को बदल देते हैं, जो बाबा श्रीमत हमें देते हैं, बच्चे आप बदल दो विचार, आपका वो बिचारा चलो हाँ छोड़ो, आप रास्ते पर जा रहे हैं, कोई पागल आदमी चल रहा है और वो पागलपन करता रहता है, क्या क्या बोलता रहता है, पागल है बेचारा, तो उस पर गुस्सा आएगा या उस पर दया आएगी, क्या आएगा? हाँ गुस्सा आएगा, ये क्या क्या बक रहा है, तो वो पागल है ना। तो तो दया आएगी, बेचारा इसको नहीं पता ये क्या बोल रहा है, शराब पिया हुआ है, ऐसे ही चल रहा है, लड़खड़ाता हुआ चल रहा है, पर उस समय उसको कुछ पता नहीं, कोई होश नहीं। तो हम उस समय उसको उससे लड़ेंगे नहीं, लेकिन हमको उन पर दया आएगी। तो इसको कहते हैं कि वो हमारा विशाल दिल हो। आज भी यहाँ बहुत सुंदर क्लास कराया हमारी डॉक्टर सविता ने, संतोष, अंदर का इतना संतोष हो जो ये बाहर की बातें हमें हलचल में नहीं लाए। और फिर ड्रामा का ज्ञान तो बाबा ने जबरदस्त दिया है। अभी हम लोगों को एक पुस्तिका मिली, ये 18 जनवरी के निमित्त मधुबन वालों को मिली, पता नहीं औरों को भी मिली होगी, जिसमें है 90 पॉइंट्स, ड्रामा की 90 पॉइंट्स, 90 बाबा ने जो हर मुरली में ड्रामा के ऊपर जो भिन्न भिन्न सुनाया है पॉइंट्स, वो 90 पॉइंट्स थी वो छोटी सी पुस्तिका में। सचमुच ड्रामा के ऊपर अगर हम इतने स्थिर रहें तो कभी डावाडोल नहीं होंगे, कभी हिलेंगे नहीं, और न्यारे और प्यारे का इतना सुंदर बैलेंस बना के चल सकते हैं। लेकिन आवश्यकता है कि हर वक्त वो ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहे। बाबा हर मुरली में कहते हैं, जो आप मुरली सुनते हो उसको उगारो, उसको उसकी जुगाली करो। जैसे गाय जुगाली करती है, सवेरे सवेरे घास खा लेती है, फिर दिन भर घास न भी खाए तो भी चलता है उसके लिए, क्योंकि जो उसने सवेरे सवेरे खाया वो आधा आधा खाया हुआ घास, उसके दो पेट होते हैं, जो हम लोग पढ़ते थे बायोलॉजी में, वो गाय के दो पेट होते हैं। तो वो दो जो पहले वो खाती, आधा खा के उस पेट में रख देती है, और फिर सारा दिन उस पेट से निकाल करके मुंह में चबाती रहती है, चबाती रहती है। अगर गाय चबाती रहती है ना सारा दिन, तो समझो वो गाय स्वस्थ है, क्योंकि उसने जो खाया है सवेरे वो ही मुख में वो चबाती रहती है, वो स्वस्थ गाय है। लेकिन अगर वो खा नहीं पाती है तो मरियल है, जैसे कि उसमें कोई ताकत ही नहीं है। तो दिन भर वो उगाड़ती रहती है, वो निकाल करके फिर उसको अंदर ही मुंह में पेट से ही निकाला, फिर अंदर चबाती रहती है। तो बाबा भी कहते हैं, जो तुम बाबा के मुरली सुनते हो वो मुरली का पहले मनन करो। चलो बोले पॉइंट्स लिखो, तो पहले शब्द आता है मनन। मनन करना माना उसको सुना और फिर वो याद करना, वर्णन करना, मनन करना। फिर मनन के बाद शब्द आता है चिंतन, उसके आगे है चिंतन। चिंतन का अर्थ है उसके आगे सोचना, बाबा ने ये किस लक्ष्य से कहा, क्योंकि हर प्रसंग अलग अलग होता है। भले ड्रामा की पॉइंट है, लेकिन ड्रामा की पॉइंट अलग अलग रूप से बाबा ने दी। सर्वव्यापी नहीं है शिव बाबा, ये अलग अलग रूप से दिया। गीता का भगवान शिव है, ये अलग अलग हर मुरली में अलग अलग ढंग से बाबा देते हैं। तो उसका चिंतन, कल बाबा ने ये पॉइंट को इस रूप से समझाया, आज बाबा ने इस पॉइंट को इस रूप से समझाया। फिर और फिर उस चिंतन के बाद है मंथन। तो मंथन माना उसमें से मक्खन निकालना, दही को का मंथन करते तब मक्खन निकलता है। तो मंथन करना माना उसकी इतनी गहराई में जाना, और गहराई में जाकर के नई नई बातें सोचना, नई पॉइंट सोचना। लेकिन इन सब का आधार क्या है? इन सब का आधार है निश्चय। ये कौन सुना रहा है? कोई मनुष्य नहीं सुना रहा है, ये भगवान के महावाक्य है। अगर ये निश्चय की कमी है तो मनन चिंतन मंथन की बजाय संशय चालू हो जाएगा। क्योंकि गहराई में गए परंतु वो मक्खन नहीं बिलोरा, मक्खन नहीं निकाला, लेकिन वो गंदा पानी था और वो पानी तो छींटे ही मारेगा और क्या करेगा, कहाँ मक्खन निकलेगा। तो संशय आया, माना गए, खत्म। ये कौन है सुनाने वाला? जब गीता की बात आती है तो गीता में क्या दिखाया है? भगवान उनको इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, लेकिन अर्जुन के मन में बार बार संशय ही आता है। हर बात में अर्जुन को संशय आता है। पर भगवान ने एक श्रीमद दी, इनको मारो, श्रीमद दी, इनको मारो। अब अर्जुन के मन में संशय उठा, मैं कैसे मारूं, मैं कैसे मारूं। हाँ, तो भगवान ने कहा इनको मारने, आप मारो, लेकिन ये कोई आत्मा तो मरती नहीं है। हाँ, तो दूसरा अध्याय पूरा आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान, आत्मा तो मरती नहीं है, आप किसको मारोगे? लेकिन ये युद्ध के मैदान में खड़े हो इसलिए इनको मारो, ये तुम्हारा अभी कर्तव्य है, कर्तव्य का पालन करो, मारो। पर बाबा क्या कहते हैं, मारो माना कोई हथियार चला के नहीं मारो, बुद्धि से मारो, देश है देह के सब संबंधों को भूलो। भले उन्होंने स्थूल युद्ध दिखा दिया है, लेकिन समझते तो है ना, ये मारो माना स्थूल रूप से कोई हिंसा करने की बात नहीं है। तो भगवान ने कहा मारो, इनको आत्मा देखो, आत्मा अजर अमर अविनाशी, आत्मा मरती नहीं है। फिर अर्जुन को आया, पर मैं क्यों मारू, संशय उठा ना, मैं क्यों मारू, अगर इनको मरना है तो अपने दम से मरी, जब इनके मरने का समय आएगा मैं क्यों निमित्त बनू। फिर भगवान ने दूसरा शस्त्र चलाया, हे अर्जुन तुम अपने आप को देखो, मैं कौन हूं, तुम क्षत्रिय हो, अगर तुम अभी युद्ध के मैदान से हट जाओगे और नहीं मारोगे तो तुम कायर कहलाओगे, कायर कहलाओगे, कि आपके जो वारिस होंगे वो कहेंगे हमारे पूर्वज तो कायर थे, इसीलिए कायर मत बनो, मैदान को छोड़ के मत जाओ, इनको मारो, ये तुम्हारा अभी कर्तव्य है, तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय माना युद्ध के मैदान में गया, या तो मरेगा या तो अनेकों को मार कर आएगा, वो ऐसे ही नहीं वापस आएगा। फिर भी अर्जुन ने समझा नहीं, यार संशय उठा नहीं, कौन मुझे बोल रहा है, संशय उठा। फिर और आगे, फिर भगवान ने कहा कि अगर इस युद्ध में तुम जीतोगे तो तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे, इसीलिए युद्ध करो, विजय तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। संशय बुद्धि विनश्यंती, निश्चय बुद्धि विजयंती, तुम युद्ध करो तुम विजयी बनोगे। पर फिर उसके फिर संशय उठा, अगर मैं विजयी बन भी गया और वो स्वर्ग मुझे मिल भी गया, वो स्वर्ग मुझे किस काम का, ये मैंने रिश्ते ना मामा चाचा काका गुरु को मार करके कौन सा स्वर्ग लेना है, वो भी नहीं चाहिए, वो स्वर्ग किस काम का। फिर भगवान ने कहा अच्छा तुमको चलो स्वर्ग का महाराजा नहीं बनना है तो तुम स्वर्ग में तो आओगे, तो कहा ऐसा स्वर्ग हमको चाहिए ही नहीं जहां मैं अपने मामा चाचा काका को मारूं। फिर भी संशय, फिर भगवान ने उनको अपना साक्षात्कार कराया, अपना साक्षात्कार कराया कि ये कौन तुमको बोल रहा है, ये साकार रूप में जो रूप देख रहे हो ये नहीं बोल रहा है, लेकिन विराट रूप का साक्षात्कार कराया, हजारों सूर्यों से तेजोमय स्वरूप का साक्षात्कार कराया, जो वो उस समय और कैसे सब उनके मुख में जा रहे हैं, विनाश हो रहा है, वो जब दिखाया कि हाँ, तो उस समय अर्जुन ने कहा बस करो, ये अपना मोहिनी रूप वापस दिखाओ। तब उसको निश्चय हुआ ये बोलने वाला कौन है, ये कोई साधारण या साकार रूप में कृष्ण नहीं है। तब उसको निश्चय बैठा, उस समय निश्चय बैठा और कहा अब मैं शरण में आता हूँ। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, है ना, अब मेरा मोह नष्ट हुआ है, मुझे स्मृति आई है कि मुझे क्या करना है। तब तक तो वो मोह के वश था, ये सारा मोह को जीतने की सारी गीता है। तो मोह को जीतना है, हर विकार को जीतने की बातें हैं गीता में। कामेषु क्रोधेषु, काम क्रोध, काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है, मानो सारे विकार। इसके लिए आत्मा आत्मा, कई लोग कहते हैं आप लोग आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा यही बातें करते हो, कुछ और बातें आप लोगों को आती नहीं है। हम कहते हैं जरूरत ही नहीं है और बातों की, आत्मा परमात्मा की समझ आ गई, मानो सब कुछ समझ आ गई। मुझे याद है अनुभव कि वे जब पहली बार विदेश जा रही थी तो बाबा से हमने छुट्टी ली। विदेश अफ्रीका जा रही थी, नई सेवा थी, पहली बार विदेश जा रहे थे तो बाबा से हमने पूछा, बाबा हम क्या सेवा करें वहां? तो बाबा ने कहा तुम्हारे सामने बहुत पढ़े लिखे लोग आएंगे, बहुत विद्वान आएंगे, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग आएंगे, लेकिन कभी ऐसे नहीं समझना कि ये तो बहुत होशियार लोग हैं और मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूं, मान लो। परंतु उस समय ये समझना कि इनके पास सारी दुनिया का ज्ञान है लेकिन खुद का ज्ञान नहीं है, खुद का ज्ञान ही नहीं है। देखो उनको पता ही नहीं है कि वो है कौन, और यही प्रश्न सदियों से ही चलता आ रहा है, मैं कौन मैं कौन मैं कौन, तो खुद का पता नहीं। तुम्हारे पास बहुत धनवान लोग आएंगे, बहुत धनवान लोग आएंगे, लेकिन उस समय ये नहीं सोचना कि ये तो कितने धनवान है, करोड़पति अरबपति पद्मपति, और मेरे पास तो बैंक बैलेंस ही नहीं है। पर उस समय ये सोचना कि इनके पास कितना भी धन है लेकिन शांति का धन नहीं है। तो सबसे बड़ा धन कौन सा है? सबसे बड़ा धन कौन सा है? शांति का धन। तो बाबा ने जो ज्ञान दिया वो शांति का धन अनुभव करने के लिए है। इसलिए बाबा घर की याद दिलाते, बच्चे घर में पहुंच जाओ, परम धाम में मैं आत्मा बिल्कुल शांत, अभी अभी कर्म में आओ, अभी अभी कर्म से न्यारे हो जाओ, कर्मातीत कर्म से न्यारे, सब कुछ करो पर फंसो नहीं, निभाओ जरूर, क्योंकि छोड़ के कहाँ जाएंगे, इतने जन्मों का हिसाब किताब है वो यहीं चुकतू करना है, पर आगे कोई हिसाब किताब बनाना नहीं है। तो वो पुरुषार्थ हमारा हो जो बाबा ने आज कहा, अग्नि योग अग्नि तपाओ, सीता का मिसाल दिया बाबा ने, सीता अग्नि से पार हुई अपनी पवित्रता को वो साबित करने के लिए, कोई वो सचमुच अग्नि से पार नहीं होने की बात है सीता की, लेकिन अपनी पवित्रता की प्रतिज्ञा, वो सच्ची अग्नि है और साथ साथ योग की ज्वाला रूप, तो वो योग का ज्वाला रूप, उसमें हम इतने पास हो जाएं जो हमारे सारे विकर्म विनाश हो जाएं, और आत्मा वो पवित्र आत्मा बाबा के संग वापस जाए, क्योंकि बाबा कहते हैं मेरे साथ कौन आ सकेंगे जो मेरे जैसे होंगे, इसलिए मुझे बाप समान बनना है। जो बाबा ने किया उसके कदम कदम पर चलना है, फॉलो फादर जिसको बाबा कहते हैं। जो भी कर्म करो पहले देखो बाबा ने ये किया, बाबा अगर होते तो वो करते, बाबा क्या करते, तो मुझे भी वही करना है। तो देखो कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर हम चल सकते हैं, जरूर चल सकते हैं, जरूर चल सकते हैं, चल सकते हैं या नहीं? हाथ उठाओ, हाँ ठीक, हाँ जरूर चल सकते हैं, इस निश्चय से आगे बढ़ते रहो, ठीक है। चलो ओम शांति ओम शांति ओम शांति।
श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार।